नमस्ते, मैं आराव हूँ। नाइन नॉट ट्री के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मैं इस पुस्तक का सारांश और समीक्षा करूंगा, हेड फर्स्ट डिजाइन पैटर्न्स, ए ब्रांड फ्रेंडली गाइड। एरिक फ्रीमैन, एलिजाबेथ रॉब्सन, बर्ट बेट्स और कैथी सियरा की सॉफ्टवेयर डिजाइन पर केंद्रित पुस्तक है। यह ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में बार बार उभरने वाली डिजाइन समस्याओं के लिए स्थापित समाधानों यानी डिजाइन पैटर्न्स का व्यावहारिक परिचय देती है। पुस्तक का लक्ष्य केवल पैटर्न्स की परिभाषाएं याद कराना नहीं, बल्कि यह समझाना है कि किसी डिजाइन में बदलाव कठिन क्यों हो जाता है और सही पैटर्न उस कठिनाई को कैसे घटा सकता है। इसकी प्रस्तुति पारंपरिक तकनीकी संदर्भ पुस्तकों से अलग है। चित्रों, संवादों, छोटे अभ्यासों, कोड उदाहरणों और क्रमिक समस्या समाधान के माध्यम से पाठक को अवधारणाओं तक पहुंचाया जाता है। मुख्य उदाहरण जावा की पृष्ठभूमि में है, फिर भी केंद्रीय विचार भाषा से बड़े हैं। पुस्तक व्यवहारात्मक, संरचनात्मक और निर्माण संबंधी पैटर्न्स को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिद्धांतों से जोड़ती है। इस कारण यह उन डेवलपर्स के लिए उपयोगी आधार बनती है जो अधिक लचीला, समझने योग्य और परिवर्तन के अनुकूल सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हैं। मैं आपको इस किताब से मुख्य बातें बताऊंगा। सबसे पहले, परिवर्तनशील हिस्सों को अलग रखने का मूल डिजाइन सिद्धांत। पुस्तक का आधारभूत विचार है कि अच्छे डिजाइन का अर्थ भविष्य की हर संभावित जरूरत का अनुमान लगाना नहीं है। अर्थ यह है कि जिन हिस्सों में बदलाव की संभावना अधिक है, उन्हें स्थिर हिस्सों से अलग किया जाए। लेखक इसे एनकैप्सुलेट व्हाट वेरिज के सिद्धांत के रूप में रखते हैं। यदि किसी क्लास में व्यवहार सीधे लिख दिया जाए, तो नए व्यवहार जोड़ने या पुराने को बदलने पर उसी क्लास में बार बार संशोधन करना पड़ता है। इससे कोड का प्रभाव क्षेत्र बढ़ता है और अनपेक्षित त्रुटियों की संभावना भी बढ़ती है। पुस्तक इस समस्या का समाधान इंटरफेस, अलग व्यवहार ऑब्जेक्ट्स और कंपोजिशन के जरिए दिखाती है। कंपोजिशन का आशय है कि एक ऑब्जेक्ट अपना बदलने योग्य काम दूसरे ऑब्जेक्ट को सौंपे, बजाय इसके कि वह हर व्यवहार को विरासत के माध्यम से स्थायी रूप से ग्रहण करे। इससे व्यवहार को रनटाइम पर बदला भी जा सकता है। यह सिद्धांत पैटर्न्स को महज नामों की सूची नहीं रहने देता। पाठक यह देख पाता है कि स्ट्रेटेजी जैसे पैटर्न का उपयोग कब उचित है। केंद्रीय कसौटी यह रहती है कि परिवर्तन को स्थानीय बनाया जाए, ताकि नई मांग आने पर पूरे डिजाइन को दोबारा ना लिखना पड़े। साथ ही पुस्तक यह संकेत देती है कि केवल काल्पनिक बदलावों के डर से अतिरिक्त अमूर्तन जोड़ना भी अनुचित जटिलता पैदा कर सकता है। दूसरा, स्ट्रेटेजी और ऑब्जर्वर से व्यवहार तथा सूचनाओं का लचीला प्रबंधन। स्ट्रेटेजी पैटर्न पुस्तक में इस बात का प्रमुख उदाहरण है कि विरासत के बजाय कंपोजिशन क्यों उपयोगी हो सकती है। जब किसी प्रकार के ऑब्जेक्ट्स में कुछ व्यवहार समान हो, लेकिन कुछ व्यवहार अलग अलग या बदलने योग्य हो, तब हर उपवर्ग में वही कोड दोहराने के बजाय व्यवहार को अलग इंटरफेस के पीछे रखा जाता है। मुख्य ऑब्जेक्ट उस व्यवहार का उपयोग करता है, पर उसके ठोस कार्यान्वयन पर निर्भर नहीं रहता। इसका लाभ यह है कि नए विकल्प जोड़ना अपेक्षाकृत सीमित परिवर्तन बन जाता है। ऑब्जर्वर पैटर्न दूसरी समस्या हल करता है, जिसमें एक ऑब्जेक्ट की स्थिति बदलने पर कई अन्य ऑब्जेक्ट्स को सूचना चाहिए। पुस्तक इसे वन टू मेनी निर्भरता के रूप में समझाती है। सब्जेक्ट अपने ऑब्जर्वर्स को पंजीकृत और हटाने की सुविधा देता है तथा बदलाव पर उन्हें सूचित करता है। इसलिए सूचना पाने वाले घटक सीधे सब्जेक्ट की आंतरिक संरचना से नहीं बनते। यह ढांचा डिस्प्ले, अलर्ट, रिपोर्टिंग या अन्य प्रतिक्रिया तंत्रों में उपयोगी हो सकता है। दोनों पैटर्न्स के बीच साझा तर्क ढीला युग्मन है। स्ट्रेटेजी बदलते कार्यान्वयन को अलग करती है, जबकि ऑब्जर्वर बदलती स्थिति के प्रभाव को अलग करता है। पुस्तक यह भी स्पष्ट करती है कि यह लचीलापन तभी सार्थक है, जब सच में कई व्यवहारों या कई निर्भर उपभोक्ताओं की जरूरत हो। तीसरा, डेकोरेटर और फैक्ट्री से विस्तारशील संरचना और निर्माण नियंत्रण। डेकोरेटर पैटर्न उस स्थिति पर केंद्रित है जहां किसी ऑब्जेक्ट में वैकल्पिक क्षमताएं जोड़नी हो। केवल विरासत के सहारे अलग अलग सुविधाओं के सभी संयोजन बनाने पर उपवर्गों की संख्या तेजी से बढ़ सकती है। डेकोरेटर में मूल ऑब्जेक्ट को उसी इंटरफेस वाले आवरण ऑब्जेक्ट्स में रखा जाता है। प्रत्येक आवरण अपने हिस्से की जिम्मेदारी जोड़ता है और शेष काम लिपटे हुए ऑब्जेक्ट को सौंप देता है। इस प्रकार क्षमताओं को संयोजित किया जा सकता है। पुस्तक इसका उपयोग यह दिखाने के लिए करती है कि विस्तार का अर्थ हमेशा एक विशाल केंद्रीय क्लास बनाना नहीं है। फैक्ट्री पैटर्न दूसरी प्रकार की निर्भरता संभालता है, निर्माण की निर्भरता। यदि क्लाइंट को हर ठोस क्लास का नाम पता हो और उसे सीधे बनाया जाए, तो क्लाइंट नई किस्मों से कसकर जुड़ जाता है। सिंपल फैक्ट्री, फैक्ट्री मेथड और एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री के माध्यम से पुस्तक निर्माण संबंधी निर्णयों को अलग स्थान पर ले जाने की दिशा दिखाती है। फैक्ट्री मेथड उपवर्गों को निर्माण का निर्णय बदलने देता है, जबकि एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री संबंधित ऑब्जेक्ट्स के परिवार बनाने के लिए इंटरफेस देती है। यहाँ महत्वपूर्ण बात केवल न्यू ऑपरेटर को हटाना नहीं है, उद्देश्य यह है कि उच्च स्तरीय उपयोग नियम ठोस उत्पादों की विविधता से स्वतंत्र रहें। फिर भी लेखक का व्यावहारिक संदेश यह है कि छोटे और स्थिर मामलों में फैक्ट्री का अतिरिक्त ढांचा आवश्यक नहीं होता। चौथा, कमांड स्टेट और टेम्पलेट मेथड में जिम्मेदारियों की स्पष्ट सीमाएं। पुस्तक के कई व्यवहारात्मक पैटर्न्स जटिल नियंत्रण प्रवाह को छोटे अलग जिम्मेदारियों वाले ऑब्जेक्ट्स में बांटते हैं। कमांड पैटर्न किसी अनुरोध को एक ऑब्जेक्ट में बदल देता है। अनुरोध भेजने वाला घटक यह जानने से मुक्त हो जाता है कि काम कौन करेगा और कैसे करेगा। रिसीवर वास्तविक कार्य करता है, जबकि इन्वोकर केवल कमांड को चलाता है। यह पृथक्करण बटन, मेनू, कतारबद्ध कार्यों और अंडू जैसी जरूरतों के पीछे का डिजाइन तर्क समझाने में सहायक है। स्टेट पैटर्न में किसी ऑब्जेक्ट का व्यवहार उसकी वर्तमान अवस्था के अनुसार बदलता है। बड़े कंडीशनल कथनों में सभी अवस्थाओं और संक्रमणों को भर देने के बजाय प्रत्येक अवस्था को अलग ऑब्जेक्ट के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। इससे किसी अवस्था का नियम उसी स्थान पर रहता है, हालांकि बहुत सरल स्थिति मशीन के लिए यह अनावश्यक विस्तार हो सकता है। टेम्पलेट मेथड पैटर्न अलग समस्या सुलझाता है। यह किसी प्रक्रिया का स्थिर क्रम एक अमूर्त क्लास में परिभाषित करता है और कुछ चरण उपवर्गों के लिए छोड़ देता है। इससे एल्गोरिदम की समग्र संरचना स्थिर रहती है, मगर भिन्न चरण अनुकूलित किए जा सकते हैं। इन तीनों पैटर्न्स में पुस्तक जिम्मेदारी के विभाजन पर जोर देती है। डिजाइन का उद्देश्य कोड को केवल अधिक ऑब्जेक्ट्स में बांटना नहीं, बल्कि बदलाव के कारणों को अलग रखना है। अंत में पैटर्न्स को तैयार नुस्खे नहीं, संदर्भ आधारित डिजाइन भाषा मानना पुस्तक डिजाइन पैटर्न्स को सीधे कॉपी किए जाने वाले कोड टेम्पलेट्स की तरह प्रस्तुत नहीं करती। पैटर्न एक दोहराई जाने वाली डिजाइन समस्या, उसके संदर्भ, समाधान की संरचना और उसके परिणामों को व्यक्त करने का तरीका है। इस दृष्टि से पैटर्न्स टीम के भीतर साझा भाषा भी बनते हैं। यदि डेवलपर्स किसी हिस्से को ऑब्जर्वर या फैक्ट्री के संदर्भ में बताते हैं, तो वे अपेक्षित भूमिकाओं और निर्भरताओं पर अपेक्षाकृत संक्षेप में चर्चा कर सकते हैं। लेकिन पुस्तक के उदाहरण इस लाभ के साथ लागत भी दिखाते हैं। इंटरफेस, प्रतिनिधि ऑब्जेक्ट्स और अतिरिक्त परतें लचीलापन देते हैं, पर शुरुआती समझ और संरचनात्मक जटिलता भी बढ़ाते हैं। इसलिए पैटर्न का नाम जानना पर्याप्त नहीं है। यह समझना आवश्यक है कि वर्तमान कोड में किस चीज के बदलने की संभावना है, कौन किस पर निर्भर है और कौन सी निर्भरता वास्तव में हानिकारक है। पुस्तक प्रोग्राम टू इंटरफेसेज नॉट इम्प्लीमेंटेशंस जैसे सिद्धांतों को विभिन्न पैटर्न्स के पीछे का सामान्य आधार बनाती है। इसका व्यावहारिक परिणाम यह है कि पाठक पैटर्न्स को सजावटी वास्तुकला के बजाय निर्णय लेने के उपकरणों की तरह देखना सीखता है। विशेष रूप से नया डेवलपर हर जगह पैटर्न लगाने की प्रवृत्ति से बच सकता है। सरल समाधान से आरंभ करना और वास्तविक परिवर्तन दबाव दिखाई देने पर उचित पैटर्न चुनना इस पुस्तक की संतुलित सीख है। निष्कर्ष में, हेड फर्स्ट डिजाइन पैटर्न्स उन जावा केंद्रित या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेवलपर्स के लिए विशेष रूप से उपयुक्त है जो डिजाइन पैटर्न्स के नाम तो सुन चुके हैं, पर यह नहीं समझते कि वे वास्तविक कोड में किस समस्या के लिए हैं। यह शुरुआती पाठक के लिए प्रवेश बिंदु हो सकती है और अनुभवी डेवलपर के लिए डिजाइन सिद्धांतों की पुनरावृत्ति। पाठक को स्ट्रेटेजी, ऑब्जर्वर, डेकोरेटर, फैक्ट्री, कमांड और स्टेट जैसे पैटर्न्स के साथ ढीले युग्मन, कंपोजिशन, प्रतिनिधिकरण और इंटरफेस आधारित डिजाइन का व्यावहारिक संबंध समझ में आता है। इसका मुख्य लाभ यह है कि यह अमूर्त परिभाषाओं से शुरू नहीं करती। पहले एक डिजाइन कठिनाई और उसके सीमित समाधान को सामने रखती है, फिर पैटर्न के कारण, संरचना और परिणाम स्पष्ट करती है। चित्रात्मक, संवादात्मक और अभ्यास आधारित शैली इसे गैंग ऑफ फोर जैसी अधिक सघन संदर्भ पुस्तकों से अलग बनाती है। पैटर्न्स की सीमाएं, आधुनिक भाषा सुविधाएं और बड़े सिस्टम में उनके विकल्प समझने के लिए वास्तविक कोड, अतिरिक्त अध्ययन और समीक्षा की जरूरत रहती है। फिर भी इस पुस्तक की विशिष्टता यही है कि यह पैटर्न्स को याद रखने योग्य शब्दावली नहीं, बल्कि परिवर्तनशील सॉफ्टवेयर को संभालने की सोच के रूप में सिखाती है। जो पाठक उदाहरणों को अपने प्रोजेक्ट्स में पहचानने और छोटे प्रयोग करने के साथ पढ़ेगा, उसे इसका सबसे ठोस लाभ मिलेगा। यदि आप समर्थन करना चाहते हैं एरिक फ्रीमैन, आप इस किताब को पॉडकास्ट डिस्क्रिप्शन में दिए गए अमेज़न लिंक से खरीद सकते हैं। किताब पढ़ने के बाद मुझे जरूर बताएं कि आपको यह कैसी लगी और अपने विचार शेयर करें। फिर मिलते हैं।